Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka hum jaiza lete hain, saath hi baat karte hain pramukh antarrashtriya share bazaron ke bare mein aur baat karte hain Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange ke bare mein. Khabron ki barikiyon par charcha karne ke liye aaj hamare saath studio mein uplabdh hain market expert Sharad Kohli. Sharad, bahut swagat aapka.
Warm welcome Sharad.
Dhanyawad Harsh, thank you so much Rajesh aur sabhi shrotaon ko दिल से अभिनंदन.
तो शुरू करते हैं सबसे पहले राजेश लेख हेडलाइंस इंग्लिश में.
इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस क्लोज फ्लैट टुडे. सेंसेक्स क्लोजेस एट 79,441. निफ्टी सेटल्स एट 24,124. सेबी इश्यूज नोटिस टू हिंडनबर्ग रिसर्च फॉर ट्रेड वायोलेशंस एंड ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स अबव $87 इन द ग्लोबल क्रूड मार्केट.
भारतीय शेयर बाजार आज सपाट रहे. सेंसेक्स मामूली 35 अंक की गिरावट के साथ 79,441 पर रहा, जबकि निफ्टी 18 अंक की गिरावट के साथ 24,124 पर रहा. सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को शेयर कारोबार में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $87 से ऊपर पहुंची. इस सप्ताह आज कारोबार का दूसरा दिन था. मंगलवार का दिन लगभग सपाट बना रहा. बीएसई और एनएसई कारोबार के शुरुआत में थोड़ी सी बढ़त रही थी, लेकिन बाद में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, इसलिए इसमें गिरावट आई. और फाइनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 35 अंक गिरा, 79,441 पर रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 18 अंक की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,124 पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी की 231 कंपनियों के शेयर आज अपने 52 सप्ताह की ऊंचाई पर रहे, जबकि 15 कंपनियों के शेयर पिछले 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर रहे. और विस्तारित बाजार की बात करेंगे. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.5% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सपाट बना रहा. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 11 कंपनियों के शेयर फायदे में रहे.
India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended flat today, erasing early gains. The Sensex dropped 35 points, or 0.04%, to close at 79,441. Nifty declined 18 points, or 0.07%, to settle at 24,124. Both the indices rose about 0.4% each to record high levels at the open. In the NSE Nifty, 231 companies hit their 52-week high, 15 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, mid-cap index was down by 0.57%, while the small-cap index was marginally up by 0.07%. In the Sensex index, 11 out of 30 companies registered gains. The top three gainers today were Larsen & Toubro, 2.74%, Infosys 1.97%, and HDFC Bank 1.51%. Conversely, the three major laggards were Bharti Airtel 2.38%, Kotak Bank 2.16%, and Tata Motors 2%. In sectoral indices at the BSE, 8 out of 20 logged gains. The top three gainers were Information Technology 1.09%, Realty 0.88%, and Industrials 0.5%. Whereas Telecommunication 1.31%, Bankex 0.91%, and Auto 0.74% were the three major laggards. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,008 companies, the shares of 2,036 companies advanced, 1,880 declined and 92 remained unchanged.
रुपए की बात करेंगे, विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 83.51 रूपये रही। डॉलर इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ लगभग 106 पर था। आज के मार्केट पर चर्चा शरद के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा होगी। शरद, सीधा सवाल अब जो बनता है एक आम निवेशक का या शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखने वालों का, वो ये कि अब बजट आने वाला है
जी।
और आम तौर पर बजट के पहले वो कहते हैं ना कि बाजार एक करवट सा लेता है, आपको क्या लग रहा है कि क्या बाजार ऐसा ही बना रहेगा या इसमें कुछ करवट आएगी, कुछ ज्यादा कारोबार बढ़ेगा?
देखिए हर्ष, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो करवटें तो पहले से ही काफी आ रही हैं बाजार में। अभी भी बाजार जितना दौड़ा है, खासकर जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद बाजार ने बहुत अच्छी दौड़ लगाई है और बाजार इस समय बुल रन में है। बीच बीच में आपको कोई कोई दिन कंसोलिडेशन दिखाई देती है। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो नैसडैक की बात करें, हम S&P की बात करें, हम डाओ की बात करें, वो भी ऑल टाइम हाईस को टच करें। बाजार हमारा भारतीय बाजार भी आपको अब तो हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिल जाता है कि इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। तो ऐसे में बिल्कुल जब आप एक ही डायरेक्शन में देखें, बाजार कभी नहीं जाता है। पहले तो हमें ध्यान रखना होगा, चाहे बजट कारण हो या बजट कारण ना हो, हालांकि बजट आने वाला है, बहुत बड़ा ट्रिगर है इस महीने का और कहीं तीसरे हफ्ते में शायद हमको बजट देखने को मिले। पर उससे पहले, बजट से पहले क्या होगा, बजट के थोड़ा सा इस बार देर होने की वजह से आपको जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं हर्ष, ये ध्यान देने वाली बात होगी, जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और हमको पता है सबसे पहले IT कंपनीज के आते हैं और आपने देखा होगा कंपनी जैसे TCS है, HCL है, इनके पहले आते हैं। थोड़ा सा इन्फोसिस का इस बार डिले हो सकता है, तो आईटी के रिजल्ट्स पहले आ जाते हैं। तो उन रिजल्ट्स के आपको जो आईटी इंडेक्स बढ़ती हुई दिखाई दी, ये उन रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में बढ़ती हुई दिखाई देती है। और हम लोग मार्केट में एक कहावत बोलते हैं, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, एक कहावत बोली जाती है कि आपको जब ये ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं शायद आईटी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो लोग खरीदारी करते हैं, और जब असल में रिजल्ट आते हैं तो चाहे अच्छे भी हों उस टाइम मार्केट नीचे जाती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात से लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पर खैर वो तो चलिए एक अलग थ्योरी है। पर बाजार का मुझे लग रहा है कि इस समय इतना चढ़ चुका है कि जो इन्वेस्टर है जिसको पैसा इस समय लगाना है, मुझे लगता है उसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, उसको बाजार में किसी भी दिन नहीं घुस जाना चाहिए। खासकर अगर वो लंबी अवधि का है तो उसको इंतजार करनी चाहिए बाजार के नीचे आने के बीच में। और एक करवट, बिल्कुल हर्ष ने बड़ी पते की बात बोली, एक करवट बाजार जरूर लेगा, ये तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इतना चढ़ चुका है। थोड़ी सी भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर इतने चढ़े हुए बाजार में, तो वो आपको 3-5% का झटका दे सकती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बजट में अनाउंसमेंट दोनों तरीके की होती है, हम सब जानते हैं कि बजट बाजार को दिमाग में रखकर तो बनाया नहीं जाता है, वो एक फैक्टर होता है, पर खाली उसको देखते हुए बजट नहीं बनाया जाता है। बजट में जो पॉलिसीज बनती हैं वो आम देश के हित में बनाई जाती हैं, जनता के हित में बनाई जाती हैं, इन्वेस्टर्स के हित में भी होती हैं, पर कई बार कुछ कड़वे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं पॉलिसीज में समय की मांग को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि बजट के बाद और पहले करवट जो है वो हो सकता है।
व्हाट हैज बीन दस फार इन 2023, इट इज 20% रिटर्न्स इन द मार्केट। इन अप टिल नाउ वी हैव सीन 10.4% रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। इन फैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर हैज बीन इम्प्रेसिव रिटर्न्स, सो देयर हैज द मार्केट हैज बीन डिवॉइड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन thus far. So what's your take on that? So given what my colleague was saying and what you said, convert hoegi. So isme matlab correction to abhi tak hua nahi na major, except for the election day.
Yeah. You see Rajesh, first of all, to predict the market is being very astrological, you know. If we make a prediction that way, but we should not forget, you spoke of 20% returns in 2023, you spoke of more than 10% returns this year itself,
so far,
half the year is gone. But market is not a bank fixed deposit which will consistently give you return. It can give you consistent returns for 2, 3 years, 4 years, but then there could suddenly be a year. And if you see the last 15, 20 years, market has consistently gone up, but there have been odd years, if you see the statistics, where corrections have happened. So therefore, on the flip side, Rajesh, from what you said, we are today, Nifty is over 24,000. If we are over 24,000, so even from here, even if there is a 10% correction, you are still going to be well above 21,000. So you're not in an absolute well, and you probably the ship has sunk. There's nothing of that sort. And I feel a healthy market, Rajesh, is always a market where the graph goes up, steps down a little bit, again goes up, steps. That's a healthy market. If market keeps going in one direction, I would personally, as a market analyst, I would not call it as a healthy market. Then the market becomes, market as it is risky. It will become even more risky because it's moving in only one direction. So I think these intermittent corrections are healthy. But I think what Harsh was talking about was a curvet. So when he said curvet, I'm sure he meant a slightly bigger correction, not a usual correction of 2%, 3%,
right,
4%.
Right.
So which can happen anytime, because if you see the other factors which govern the market, Rajesh, you know, you see the international factors, we see the geopolitical factors. All is not well as far as the world peace is concerned. So tomorrow, there's a deadly missile which goes from one place to the other. The market gets impacted as the very first. It's, after all, we call it as the sensitivity index. It has to be sensitive to so many things, Rajesh, so we can never rule that out.
So do you think, so long as the market construct holds steady, you think the market will remain resilient?
Yes, because now I'll talk of Indian markets. With Indian markets, see the Indian growth story, which is why when the elections came and there were a lot of discussions and analysis we did that this is a coalition government, you know the government is not as strong. So, there were a lot of things being said. But the fact of the matter is that the India growth story remains unchanged. I think what India has seen over the last decade is remarkable, and I think that story is going to continue. I feel that whatever be the government, whatever be the policies, the Indian growth story is now irreversible. And markets will normally follow, Rajesh, the Indian growth story, because it's the Indian growth story which consists of the corporate growth story. After all, one of the prime constituents of the Indian growth story is the corporate growth story. So if the corporate growth story continues, and we've seen so many platforms like FICCI, like CII, PhDCCI, ASSOCHAM, we've seen the comments coming from them. None of the industrialists, none of the big businessmen, none of the people who actually provide employment to the organized sector, none of them have been bearish on the country as such. They've been very bullish. In fact, when the delegation met the finance minister recently, they spoke of taking call on the middle class taxation and so and so. So they seem very, very positive. So when the industry is positive, after all, market is corporates. When the corporates are positive, there is no reason to be pessimistic about the market. But having said that, as I said, sometimes market gets impacted by international factors. So the India growth story is intact. It's very good. It's very robust. But the global, after all, we are part of.
It could have repercussions, which
could be beyond anybody's control. So I think, which is why I said that a curvet is something which you need to be prepared.
So today's word is curvet, and मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक आम निवेशक अगर चाहे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी बुक कर सकता है और एक करेक्शन का वेट करके दोबारा इन्वेस्ट.
जी हाँ, बिल्कुल. अगर आपको मुनाफा हो रहा है और अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आप उसको सेलिब्रेट करिए, आप उसको बुक करिए. प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स. मैं निरंतर इस कहावत को बोलता रहता हूं. आप उसको बुक करिए, उसको एंजॉय करिए. मान लीजिए आपके पास, आपने 5 लाख रुपए निवेश किया. मैं सीधा निवेश स्कोप के ऊपर जाता हूं. ये तो हो गई मैक्रो लेवल पे मार्केट की बात. पर आपने जो 5 लाख निवेश किए, तो आप उसमें से, और आपको मान लीजिए आज वो 5 लाख आपके 8 लाख हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी सलाह है उस 5 लाख में से 2.5 लाख का आप कॉस्ट का प्रॉफिट बुक कर लें, यानी कि आपको 4 लाख का मुनाफा हो जाएगा. बाकी के जो हैं उसको आप अपना जो रिस्क एक्सपोजर आपने लिया हुआ है उसको आप रखिए. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. हम यहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में थोड़ा सा मेरे दिल के करीब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा कमाते हैं, वो रिस्क कम हो जाता है, उनका रिस्क मिटिगेट हो जाता है.
और जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 3 से 5 साल का हो रहा है.
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना ज्यादा हो अच्छा है, पर हाँ कम से कम 3 साल का.
5 लाख लगाए हैं.
हालांकि मैं ट्रेडर्स और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं उनको भी उतना ही शौक से उनको गाइड करता हूं, उनको एडवाइस करता हूं और उनको उनके साथ उनको सलाह मशवरा करता हूं. पर मुझे लगता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्ट्रैटेजी हर चीज रहेगी कि वो प्रॉफिट बुक करे और आगे वो निवेश करना चाहता है, उसके पास और पैसा भी है, तो वो डिप्स का वेट करे. और ज्यादातर मैंने देखा है निवेशक जो गलती करते हैं कि सारा पैसा उठा के आवेश में आके इमोशनल होके आज मूड हो गया इन्वेस्ट करने का, चलो आज करते हैं. मुझे लगता है इमोशंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखना चाहिए और आप थोड़ा थोड़ा करके, अब उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए. मान लीजिए मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो मैं 1 लाख 15 दिन में करूं, फिर 1 लाख के लिए इंतजार करूं, फिर 15 दिन बाद में 1 लाख करूं, तो आप देखेंगे कि आपका निवेश बहुत अच्छी उतार चढ़ाव जो है, जिनकी हम करवटों की बात कर रहे हैं, आपका निवेश सारी करवट देख चुका होगा.
जी,
तो ऐसे में कुछ अच्छी करवट होंगी, कुछ बुरी करवट होंगी, ऑन एन एवरेज आपको बहुत अच्छा एंट्री मिलेगा
हर मौसम.
तो ये मुझे लगता है सही तरीका है. है।
और शरद ये देखिए कि अगर जनवरी से देखें जून तक छह महीने में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एनएससी बीएसई का वो लगभग एक ट्रिलियन रुपया से ज्यादा का बढ़ा है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जून जून में 6% बढ़ा है।
जी हाँ, एक जमाना था हम मार्केट कैप जीडीपी से हमारी पीछे रहता था
जी,
आज मार्केट कैप हमारी जीडीपी को पीछे छोड़ चुका है। 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि मार्केट ने कितनी दौड़ लगाई है। और देखिए ये जो मार्केट कैप बढ़ा है आखिर किन लोगों का बढ़ा है, जो 15 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स हैं, चलिए माना मैंने सब लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, उसमें से आधे तो एक्टिव रहते होंगे, उनकी वैल्यू एडिशन हुई है, उनके उनका पैसा बना है मार्केट में। तो अगर पैसा बना है तो ऐसे में थोड़ी बहुत करेक्शन आती भी है, तो मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और मैं आपको सही बात बताऊं, जो असली मार्केट का प्लेयर है वो कभी भी करवट से घबराता नहीं है, क्योंकि हर्ष ने आज टैगलाइन करवट दे दी है, वो करवट से कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं मार्केट में हूं तो मेरी रिस्क टेकिंग एपेटाइट, यू नो राजेश, विच वी कॉल इट एज रिस्क टेकिंग एपेटाइट, वो है। तो उतनी आपकी एपेटाइट होनी चाहिए, वरना तो हम तो ये सलाह देते हैं मार्केट से दूर रहिए, फिर अगर आपकी एपेटाइट नहीं है तो आप फिर कुछ म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, या कुछ लोग तो और भी नहीं है तो आप बैंक डिपॉजिट्स में चले जाइए, आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए। अगर मार्केट में है तो उसके लिए थोड़ा दिलदार और दिलेर दिल चाहिए, मुझे लगता है, अगर पैसा कमाना है।
एंड शरद, आई एम नॉट फॉर अ मोमेंट सेइंग दैट आई नीड टू बी पेसिमिस्ट, नॉर एम आई सेइंग दैट ये करवट कहीं गलत ना चले जाए। ऑल आई एम सेइंग इज दैट द फैक्टर्स आर पॉजिटिव, लुक एट द इंडियाज राइजिंग जीएसटी कलेक्शंस, वी हैव अबव नॉर्मल रेनफॉल फोरकास्ट एंड द कूलिंग यूएस इन्फ्लेशन, so
yes.
All this points towards bullish momentum.
Oh yes, if you ask
and
me for,
and it should continue then.
Yeah, if you ask me the parameters of India, as I said, India growth story is intact. You look at the forex reserve, we are at an all-time high.
Absolutely.
Look at the GST collection, look at the direct tax collections, they are doing exceedingly well. Look at our PMI, the Purchase Managers Index, look at our industrial IIP, the industrial output. I mean, just about any economic parameter that we pick up. Very rarely, except for inflation on food front, which I think the RBI governor himself confessed that it is being a bit adamant and that's a bit stubborn, you know, that food inflation doesn't seem to be settling down.
The elephant is still in the room.
Yeah, absolutely. And which is why the repo rate, he's not giving signs of an immediate cut that way. But I think that is an aberration. Because कहीं एक काला टीका भी रहना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, कोई एक आध चीज ऐसी होनी चाहिए
जिससे
नजर से बचाता है, कोई एक चीज तो ऐसी हो जो बोले ये भाई इंडिया में ये चीज अभी थोड़ी सी कमी रह रही है।
और चूंकि इकोनॉमी के बात कर रहे हैं, बजट की भी हमने शुरू में बात की, हो सकता है कि बजट में थोड़ा सा इस बार टैक्स में रिलीफ मिले जैसी चर्चा चल रही, क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि जीडीपी जहां हमने देखा पिछले साल 7.6% के आसपास था, वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम था, यानी कंजम्पशन को और बढ़ाना पड़ेगा ऐसा आरबीआई भी सोचती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सोचती है, तो क्या इसको लेकर शायद कुछ रिलीफ मिले टैक्स?
बहुत खूब आपने बोला हर्ष, और अभी इंडस्ट्रियल डेलीगेशन वित्त मंत्री महोदया से मिला था, और पहली बार इंडस्ट्री ने अपने लिए ना मांगते हुए कि हमें आप ये रिबेट दीजिए, हमें ये रिलीफ दीजिए, हमारे लिए सब्सिडीज दीजिए, हमारे लिए पॉलिसीज बदलिए, उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन्होंने कहा कि आप मिडिल क्लास को रिलीफ दीजिए। और देखिए जो आपने बात कही वो यहीं से निकल के आती है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा होगा टैक्स कम जाएगा,
कंजम्पशन
उस पैसे का मैं क्या करूंगा, दो ही काम कर सकता हूं, या तो मैं सेव करूंगा या उसको, अगर मैं हल्की फुल्की भाषा, उसको फूकूंगा, मैं उड़ाऊंगा, उस पैसे को खर्च करूंगा। और अच्छा अच्छी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं,
उपयोग
करूंगा, तो मैं जाके उसको खर्च करूंगा, और खर्च करेंगे तो इंडस्ट्री की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो जो आपने कहा कैपेसिटी बढ़ेगी, जो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है, जो नई इंडस्ट्रीज आना चाहती है, आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करी, वो आएंगी आगे। तो एक छोटे से ट्वीक से, हालांकि मैं साथ में हर्ष जोड़ना चाहूंगा कि इस समय 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं देश में, उसमें से जो असल में टैक्स देते हैं उनकी गिनती लगभग 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से थोड़ी कम ही है,
कम ही है।
और पर फिर भी देखिए आप, इतने कम लोगों के बावजूद हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 25% के करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है, तो ये संकेत देता है कि न केवल टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ रहा है, यही रिटर्न फाइल करने वाले पहले 6 करोड़ 5 करोड़ हुआ करते थे, आज 8 करोड़ हो गए हैं, और उन्हीं से टैक्स धीरे धीरे करके, आज आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कल आप टैक्स भी पे करेंगे, आपकी आमदनी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन बढ़ाने के ऊपर जोर होगा, इसीलिए मुझे भी कुछ उम्मीद नजर आ रही है, हालांकि अटकलें ही होंगी कि टैक्स में ट्वीक होगा कि नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये टैक्स का ट्वीक देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा,
क्योंकि जीडीपी अभी बढ़ा के हमें तो तीसरी इकोनॉमी बननी है,
मुझे लग रहा है आप मॉल में ज्यादा दिखाई देंगे मुझे।
Let's move on now. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has issued a notice to Hindenburg Research LLC, Nathan Anderson, and the entities of Mauritius-based foreign portfolio investor Mark Kingdom for trading violations in the scrip of Adani Enterprise Limited. In the 46-page show-cause notice, the market regulator has alleged that Hindenburg and Anderson violated regulations under the SEBI Act. The markets regulator pointed out that the Hindenburg and the FPI entities undertook a misleading disclaimer that the report was solely for the valuation of securities traded outside India when it clearly pertained to listed entities in India. Your take?
I think
I read it. Whatever there is.
No,
to
no.
Say.
I think SEBI has done the right thing. In fact, personally speaking, I look at it this way, that I think Hindenburg is answerable to the entire country, because what happened in January 2023, $150 billion of market capitalization knocked off from a particular group. I think it's not a joke. If you convert that to rupees, it is 12 lakh crore rupees, which is a lot of money, A lot of people at that time, they went jittery. They were nervous as to what's happening to our money. And see how the stand is vindicated. There was a committee formed and the inquiry happened. The matter went to Supreme Court as well. At none of these stages in the investigation, anything substantial came out. So I think Hindenburg has to answer this. And when they gave a disclaimer that this is meant for just valuation and for entities not in the country, but this directly impacted a country group. And I think it is not about the group. It is about, because there was an attempt to malign country's growth story, infrastructure, the government. You know, look at what happened in the parliament. There was an uproar and it went on for several days. I mean, I think this kind of act by an outside agency based out of America, I'm told there are about 9 people sitting in an office. Nathan Anderson is one of them, the one you named. And it is being funded by somebody else. I don't want to call names right now, but I think this is a very malicious move. And I would go one step forward. I would say that a legal suit should be filed against these people. Well, they should be held guilty of what they did for defamation of the group as well.
So this is not going to erode any sentiment.
No, and you know, there is a saying in English, you know, Rajesh. It says, "You fool me once, and it's shame on you. You fool me twice, it's shame on me." So, and the market showed that today, that we are not going to react to this, and you're trying to drag a bank also. I heard a bank's name being dragged. What happened to the bank at that time in January 2023? Where was the bank? How did you suddenly cook up this name? So I think there's a clear message here that it is simply to malign and bring down the market. They are short sellers. They make money about after selling the stocks. So you malign somebody, you spread a launch a propaganda, the price falls, you buy it, and you know you earn profits out of it. It's as simple as that, and they are answerable for this.
और इसी के साथ यूरोपियन एशियन यूएस मार्केट पर नजर डालते हैं. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा है. जापान का निकेई सूचकांक 1.11% बढ़ा. सिंगापुर बाजार का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स 0.87% बढ़ा, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में भी 0.28% की बढ़ोतरी रही. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स भी मामूली रूप से बढ़त पर रहा, लेकिन दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी सूचकांक 0.84% गिरा है. यूरोपीय बाजारों में थोड़ी गिरावट बनी हुई है. जर्मनी का डैक्स 0.91% गिरा है, जबकि फ्रांस के कैक 40 में भी 0.77% की गिरावट बनी है. लंदन के फुटसी 100 में भी 0.25% की गिरावट है.
एप्पल एंड टेस्ला लिफ्टेड द टेक हेवी नैस्डैक to a higher close on Monday, while the Dow Jones and the S&P 500 also registered slight gains. The Dow Jones Industrial Average was up by 0.13%. The Nasdaq increased 0.83%, while the S&P 500 gained 0.27%. Sharat, are the elections the reason why the European markets are trading in the negative territory?
You pulled it out of my mouth. In fact, when Harsh was reading the news about the CAC and the DAX, I was about to interrupt, but I thought let you finish the... Yes, I think because we saw snap polls in France. We're going to see polls in the United Kingdom in a couple of days from from now. So I think the market is a bit jittery, like any other country. You know, they are worried about what the new, how the new government would be, and we are also looking at government change. You know, in both the places, you know, far right at one, and you know, we might see you know, the Labour coming in as the polls suggest. So I think the change in policies also impacts the economy significantly, and obviously the indices do react to that. You might see some sharp corrections in the London FTSE and in CAC and DAX in the days to come. So I think people who follow those markets, there are a lot of people I know who trade in those markets as well, I think they need to keep a very close watch on what's happening in Europe, especially these three principal markets, the FTSE, the CAC and the DAX. You might see some knee-jerk curverts, for that matter, in those markets as well in the next few days.
Okay. In the US, the inflation is cooling, and we also have the key U.S. employment data, and the upcoming union budget will be closely watched. Now, all these things put together will have some repercussions on the U.S. and also the Indian market.
Absolutely, U.S. is the biggest market in the world, and anything that happens in U.S. does have repercussions across the world. Well, we should not forget that even U.S. is heading for elections, and
so how will the Fed behave?
Incidentally, the two candidates in the fray, you know, there's a lot of speculations being made about both the candidates as well. So I think it's anybody's game there, and in case there is a change in candidature, I would say that the markets, the Dow and the S&P, can also show reactions there. So I think election, you rightly picked up the word, elections in these international markets right now are at the top of the list, you know, in terms of sensitivity, and one needs to keep a very close watch on what's happening in the politics.
Abhi France mein bhi dekhe, wahan bhi ek tarike se satta parivartan ki lahar chal padi
hai. Ji, main uske zikr kar raha tha, far right ka maine zikr kiya.
Ji.
Ke wahan par bhi, aur UK mein bhi aisi umeed ki ja rahi hai ki shayad satta parivartan ho, to market to isko react karega hi karega. To main isiliye kaha, jo log अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हैं और बहुत लोग ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, मेरे बहुत बहुत लोग मुझे जानते हैं, मुझे लगता है उनको इस पॉलिटिक्स पे खास नजर रखनी चाहिए. और यूएस में
नवंबर
में भी आप
द डिबेट इज कॉजिंग लॉट ऑफ ब्रिंगिंग इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस
ऑलरेडी व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट जो लोग मार्केट को पॉलिटिकल फैक्टर से अलग देखते हैं वो ठीक नहीं है, और मुझे लगता है उनको पॉलिटिक्स को, कभी कभी मार्केट और पॉलिटिक्स बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के. मुझे लग रहा है यूरोप और अमेरिका में कुछ ऐसा ही समा बना हुआ है, और जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां रोज कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट आपको सुनने को मिल सकती है.
आप वो कहते हैं ना कि राजनीति और अर्थनीति को आप अलग नहीं कर सकते.
जी हाँ, नीति दोनों में है,
दोनों में एक राज है, एक अर्थ है. एक छोटा सा सवाल कि अभी यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और जैसा कि पॉयल साहब जैक्सन होल में जब भी जाते हैं तो अभी रेट कट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, इज वेरी हॉकिश ऑन दैट. वहां पे नैसडैक की क्या स्थिति है, क्या वहां भी कुछ करेक्शन की?
देखिए, नैसडैक की जब हम बात करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, हम एप्पल की बात करते हैं, हम नवीडिया की बात करते हैं, हम अल्फाबेट की बात करते हैं, हम सारी टेक कंपनीज की ज्यादातर बात करते हैं. मुझे लग रहा है टेक कंपनीज में पीछे जो हुआ है और जिस तरीके से ऑल टाइम हाई छू रहा है, हालांकि भारतीय जो टेक कंपनीज है उनकी थोड़ी सी ऑर्डर बुक थोड़ी सी किसी किसी की डावाडोल है, पर वहां पर टेक जो है, इनफैक्ट वहां पर ड्राइव ही टेक कर रहा है. तो मुझे लग रहा है कि नैसडैक फिलहाल ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश कर रहा है, पर वहां भी मुझे लगता है हर्ष के इलेक्शन का आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम इन टेक कंपनीज के ऊपर लगते हैं, यू नो, कहीं एड वायलेशंस का, कहीं किसी चीज का. तो इसलिए कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जो है इनके प्राइसेस को सीधा सीधा असर कर सकती है.
Moving on, oil prices registered gains in 2 months highs today on expectations of rising demand during the summer and possible supply disruptions from Hurricane Beryl. Brent crude was up by 0.83% to $87.32 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude rose 0.90% to $84.13 per barrel when report last came in.
आज के लिए बस इतना ही. शरद जी, आप आए, आपने हम लोगों से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जैसा कि राजेश जी अभी हमें बता रहे हैं कि आज सोने और चांदी की कीमतें क्या रहीं, इस पे भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने की कीमतों में 0.41% की गिरावट रही है. 10 ग्राम सोने की कीमत 71,555 रूपये रहा, और चांदी प्रति किलो 87,788 रूपये में बिकी. और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. शरद जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू शरद.
थैंक यू. माय प्लेजर. थैंक यू.
And before we close, the headlines once again. Indian benchmark indices closed flat today. Sensex closes at 79,441. Nifty settles at 24,124. SEBI issues notice to Hindenburg Research for trade violations, and Brent crude trades above $87 in the global crude market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.